महत्वपूर्ण है। हम जिन चीजों का श्रवण करते हैं उन चीजों के बारे में हम स्मरण करेंगे, और जिस चीज का स्मरण करते हैं उसी चीज का कीर्तन भी करेंगे। दिन भर यदि हम संसारी विषयों की हम श्रवण करते रहते हैं तो वही संसारी विषय हमारे मन में घूमती रहेंगी, और जब कहने का समय आएगा तो भगवान के विषय हमारे मुंह से नहीं निकलेंगे, केवल संसार के विषय ही निकलेंगे, और मृत्यु के समय भगवान का नाम नहीं आएगा हमारे मुख से, हमारे मन में भगवान के विचार नहीं आएंगे। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ऐसा एक जीवन का नियम बनाएं कि रोजाना हम भगवान की कथाओं को सुनें और सुनाएं, भगवान के इन पवित्र नामों का उच्चारण करें। ये महत्वपूर्ण बात है, और ऐसी कथा में भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं, जैसे कि हम अभी अभी सुन चुके हैं पुराणों में भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, कि हे नारद जी मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, मैं योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, मैं उस स्थान में निवास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त एकत्र होके मेरे बारे में गायन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मेरे नामों का उच्चारण करते हैं, मेरे कथा का गान करते हैं, ऐसे स्थान में मैं रहना पसंद करता हूँ, और निश्चित ही मैं उस स्थान में प्रकट हो जाता हूँ। तो यदि हमें भगवान का अनुभव करना है तो उनके कथाओं के माध्यम से, उनके उपदेशों के माध्यम से अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी श्रुतेक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका तात्पर्य है कि हमें कानों से देखने के लिए सीखना चाहिए। केवल समय से पहले हम यदि कहें हमें भगवान का दर्शन करना है, ये उचित नहीं है। भगवान के बारे में सुनते 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 हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, वो लालसा उत्पन्न हो जाएगी भगवान को प्राप्त करने के लिए। दिन भर भगवान के विचार हमारे हृदय में रहेंगे, संसार के विचार हमारे मन से दूर चले जाएंगे, धीरे से भक्ति उत्पन्न हो जाएगी हमारे हृदय में, तब हम योग्य हो जाएंगे भगवान का दर्शन करने के लिए। भक्त्यात्पनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जान लो कि केवल भक्ति से मैं जाना जा सकता हूं, और जो व्यक्ति मेरी भक्ति करके मुझे जान लेता है, मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, वो मेरा दर्शन भी कर पाएगा। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, जो तत्वतः मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त कर चुका है अवश्य मैं उसे दर्शन दे दूंगा, वो इस योग्य बन जाएगा कि वो प्रत्यक्ष मेरा दर्शन कर पाएगा। प्रवेष्टुम च, और फिर वो मेरे धाम में प्रवेश कर पाएगा, इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर वो मेरे शाश्वत धाम में मेरे सानिध्य को प्राप्त करेगा। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे कान कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए भगवान ने हमें दो बड़े बड़े कान दिए हैं, तो इन कानों में हमें क्या डालना चाहिए? संसार की बातें नहीं डालनी चाहिए, केवल भगवान की बातों को डालना चाहिए। स्वयं भगवान श्री राम ने हमें सिखलाया है अपने उदाहरण से कि उनकी कथाओं को हमें कैसे सुनना चाहिए। केरल प्रांत में दक्षिण भारत में अनेक वर्ष पूर्व एक राजा थे जिनका नाम था कुलशेखर। बहुत बड़े भक्त थे भगवान श्री राम के, इतनी भक्ति करते थे कि उनके कई मंत्री चिंतित हो गए कि हमारे राजा ऐसे भक्ति करते रहेंगे तो राज्य को संभालेगा कौन। और ये जो राजा कुलशेखर हैं, विशेष करके भक्तों की सेवा करना पसंद करते थे। जितने भी वैष्णव आया करते थे उनके राज्य में, उनका ये नियम था, एक कानून था कि उनको मेरे पास लाया जाए, मेरे दरबार में लाया जाए और स्वयं अपने हाथों से वो उनकी सेवा किया करते थे। उनको भोजन आदि परोसते थे, उनके रहने आदि की व्यवस्था करते थे, उनको दान देते थे और प्रसन्न करके फिर उनको प्रस्थान करने के लिए अनुमति देते थे। तो जब ऐसे भक्तों को पता चला कि यहां ऐसे एक बहुत धर्मात्मा राजा हैं जो बहुत बड़े भक्त हैं, तो भक्तों की संख्या बढ़ गई और राजा और भक्तों के संग में आकर उनसे कथा सुनते रहते थे। आखिर जब हम किसी भक्त के पास जाते हैं या कोई भक्त हमारे पास आते हैं, हम तो कोई संसार की बात तो नहीं करने वाले हैं, हमें तो भगवान के बारे में सुनना चाहिए उनसे। तो राजा कुलशेखर भी ऐसे भक्तों के मुखारविंद से भगवान की कथाएं सुनते रहते दिन भर। ऐसे थोड़ी बहुत राज्य के ऊपर लापरवाही हो गई, मंत्री और भी चिंतित होते गए, उन्होंने ऐसे कभी कभी ऐसे षड्यंत्र भी रचाए ये वैष्णव भक्तों को बदनाम करने के लिए। कभी भगवान का आभूषण उन्होंने जबरदस्ती चोरी कराया जानबूझकर और आरोप लगाया किसी वैष्णव के ऊपर, इस उद्देश्य से कि राजा कुलशेखर इन भक्तों से दूर रहें। परंतु राजा कुलशेखर को बहुत गुस्सा आया और उनको दंडित किया उन्होंने और कहा, यदि आप ऐसा करोगे तो हम तुरंत राज्य छोड़कर चले जाएंगे। डर के मारे मंत्रियों ने ऐसी बातें आगे चल के नहीं करी। राजा कुलशेखर की प्रथा थी कि हर रोज वो एक ब्राह्मण के मुख से वाल्मीकि रामायण की कथा सुना करते थे। रोज वो ब्राह्मण आते थे और कम से कम एक घंटा या दो घंटे उनको सुनाते थे राम कथा। अब ये ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान थे, बुजुर्ग थे, भली भांति जानते थे कि राजा की चेतना किस प्रकार की है। ये कोई सोने चांदी वाला राजा नहीं है, ये तो एक शुद्ध भक्त हैं, ये तो बड़े संत हैं वास्तव में। केवल राजा का वेश पहना हुआ है इन्होंने, परंतु हैं तो बड़े संत। और इनका भाव इतना गहरा है, इनकी भक्ति इतनी तीव्र है और विशेष करके श्री राम से इतना प्रेम करते हैं, तो वो बहुत सावधान होते थे राम कथा करते समय। जब ऐसे कोई प्रसंग आता था जिसमें शोक होता था, तो उस समय राजा का भाव ऐसे हो जाता था कि कई दिनों तक उस भाव के बाहर नहीं निकल पाते वो। इसलिए बड़े बुद्धिमानी से ये ब्राह्मण केवल वाल्मीकि रामायण के उन प्रसंगों को चुनते और उनके ऊपर टीका करते जिनको सुनकर राजा को बड़ा आनंद आता, शोक नहीं होता। एक दिन ऐसे हुआ कि ये ब्राह्मण को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा दूसरे शहर में, और उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम जाके राजा को आज सुनाओ क्योंकि मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन ये बुजुर्ग ब्राह्मण भूल गए अपने बच्चे को, अपने लड़के को बताने के लिए कि सावधान किस बारे में होना चाहिए कथा करते समय। और जब वो तरुण ब्राह्मण आए, राजा कुलशेखर ने रामायण की कथा सुनना प्रारंभ किया और ये तरुण ब्राह्मण कथा करते करते सीता के अपहरण के प्रसंग तक पहुंचे और वो भी सुना डाला। और जब सुना दिया तो राजा कुलशेखर आग बबूले हो गए, ऐसा क्रोध आया, जोर जोर से चिल्लाने लगे श्री राम के भाव में आ गए, बिल्कुल भाव विभोर होकर जोर से बोलने लगे, अरे उस दुष्ट रावण ने माता सीता का भरण किया है, इसी क्षण मैं अभी चलूंगा वहां मेरी सेना को लेकर और उस रावण की मैं हत्या करूंगा। जोर से सेनापतियों को बुलाया, सेनापति हाजिर हो जाइए सब। सारे सेनापति आ गए, अब क्या चाहते हैं राजा? और राजा कुलशेखर ने आदेश दिया, सेना को तैयार करो, अभी हम युद्ध के लिए निकल रहे हैं, उस दुष्ट रावण की हत्या करने के लिए जा रहे हैं। सेनापति एक दूसरे को देख रहे हैं कि राजा को क्या हुआ, अब क्या होगा आगे चल के, कहाँ जाएंगे? लेकिन ये तो महाराज हैं, सम्राट हैं, ना नहीं कहा जा सकता, राजा को ना नहीं बोलते कभी, तो ठीक है, और कोई उपाय नहीं था तो सब तैयार हो गए, अपने सैन्य सारी तैयार हो गई। बड़े धूमधाम से वाद्यों के बजाते हुए राजा कुलशेखर अपने सेना के आगे आगे चलते बने समुद्र की ओर। समुद्र के तट पर पहुंचे और सेनापतियों की चिंता बढ़ती गई, तनाव में आ गए कि अब राजा क्या करेंगे। किसी को साहस नहीं हो रहा था राजा को जाके रोकें और राजा को कहें कि श्री राम की लीला तो कब की समाप्त हो गई, ये तो आप भाव में आके ऐसे कह रहे हैं। किसी को साहस नहीं हुआ। उधर राजा अकेले अपने तलवार हाथ में लिए जल में प्रवेश कर गए, समुद्र में अंदर चलते गए, पानी यहां तक ऊपर तक आई, और उधर स्वयं श्री राम को ही आना पड़ा, उनके पुनः उनको वापस ले आए। तब उनका भाव भंग हो गया और बाह्य चेतना आ गई, उनको पता चला कि हाँ, मैं तो राजा कुलशेखर हूँ, मुझे राज्य संभालना है, और फिर अपने सेना को लेकर वापस अपने राजधानी चले गए। और सारे मंत्री सेनापति सब थोड़े सांस लेने लगे अभी कि ठीक है, अब कोई दुर्घटना हुई नहीं, नहीं तो न जाने क्या हो सकता था। तो ऐसे भक्त थे राजा कुलशेखर, इस प्रकार से वो राम कथा सुनते थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राम कथा सुनते समय यहाँ आप में से हर एक उठ के तलवार उठा के रावण की ओर जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, परंतु एक उपदेश हमारे लिए अनुसरणीय है कि कितना मग्न होकर हमें भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, रोज हमें सुनना चाहिए। ये हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की सभ्यता है। पहले गांव-गांव में ऐसे हुआ करता था, लोग इकट्ठे हो जाते थे सुबह शाम, या कम से कम दिन में एक बार शाम को कोई रामायण की कथा सुनाता, कोई महाभारत की कथा सुनाता, तो कोई श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता, कुछ कीर्तन होता गांव के मंदिर में, और फिर अपने अपने घरों में चले जाते और हर शाम को ऐसे मिलते। कितना सुंदर जीवन था ये, हम क्या खो बैठे हैं, एक अनमोल रत्न को खो बैठे हैं, और टूटे हुए कांच के टुकड़ों को हमने स्वीकार कर लिया है, ये सिनेमा और टेलीविजन की संस्कृति को हमने स्वीकार कर लिया है। आज जहां पहले घर घर में रामायण भागवत महाभारत की कथाएं हुआ करती थीं, भगवान के पवित्र नाम की ध्वनि गूंजती थी, आज उन्हीं घरों में दिन भर रात भर टेलीविजन चलता है, जहां अर्धनग्न अवस्था में स्त्रियां सिनेमा की गाने गाती हैं और सारा परिवार उस टेलीविजन के सामने बैठ के ये सब देखता है, ये सारा परिवार देखता है। ऐसे संस्कार बच्चों में रहते हैं, बड़ों में रहते हैं, कितनी विडंबना है, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि क्या हमने खोया है, इसे पुनः हमें प्राप्त करना चाहिए। ऐसी संस्कृति को जिसमें केवल हमारे मन को ज्यादा विचलित कर देते हैं और दुर्गुणों को की वृद्धि होती है। ऐसे संस्कृति को स्वीकार करने से क्या लाभ। और केवल शहरों में नहीं, हम अनेक बार बहुत ऐसे गांव में गए हैं जो पहाड़ों में हैं, जंगलों में हैं। हम जा चुके हैं ऐसे कई गांव में जहां मीलों मील तक दूसरा कोई गांव नहीं है, और यदि उनको कहीं जाना पड़ता है तो मीलों तक चलना पड़ता है वहां जाकर कोई बस मिले या नहीं मिले, घंटों तक बैठना पड़ता है उनको। ऐसे स्थानों में हम गए हैं और कई जगह में देखा है कि वहां भी टेलीविजन के एंटेना दिखाई पड़ रहे हैं, और वहां पर भी वो बेचारे गांव के लोग देख रहे हैं वही सिनेमा के नाच गाने। कहां उनका सरल जीवन बेचारों का, गांव में कितने भोले भाले, अभी सब खराब होते जा रहे हैं। बाहरी शहर के फिल्मी चमक धमक को देखकर उनका मासूम चित्त अब प्रदूषित होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है। अभी वो उनका सरल स्वभाव खत्म हो चुका है। ये सिनेमा और टीवी की संस्कृति ने हमारे सारे समाज को बिगाड़ दिया है, हमारी सारी संस्कृति को बिगाड़ दिया है। कब वो दिन आएगा जब पुनः ऐसी एक संस्कृति का निर्माण होगा, जब घर घर में बच्चा बच्चा राम कथा कृष्ण कथा सुनाएगा और सुनवाएगा अन्यों को। हमें याद है ये लव कुश की कहानी, कि जब लव और कुश ने रामायण की कथा सुनाई और राम ने सुनी। हम जब तीसरी या चौथी कक्षा में थे, हमने पढ़ा था हमारे पाठशाला के ग्रंथ में, किताब में ये कहानी थी। उस समय भी अभी तक हमें स्पष्ट याद है। लेकिन आजकल जब हम बड़े शहरों के स्कूलों की किताब देखते हैं तो ऐसे कोई कथाएं नहीं दिखाई पड़ती, तरह तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन भगवान के बारे में कोई चीज नहीं सुनने में आता है। तो हमें चाहिए कि हम पुनः इस संस्कृति को जागृत करें, भगवान को हमारे जीवन में केंद्र बिंदु बनाएं। हमारे देश का सबसे बड़ा धन कंप्यूटर नहीं है या सैटेलाइट नहीं है, हमारे देश का सबसे बड़ा धन है हमारी आध्यात्मिक संस्कृति। एक अनमोल रत्न की तरह है, इसको हमें बचाए रखना है। इसको हम खो बैठेंगे तो हमें जानना है कि हम सब कुछ खो बैठे हैं। और यदि इसको हमने बचाए रखा, भले हम कंप्यूटर मिले हमें या न मिले, लेकिन सबसे बड़े धनी व्यक्ति हम हो जाएंगे दुनिया के। भारत प्रसिद्ध है आध्यात्मिक संस्कृति के लिए। आजकल ट्रकों और लॉरियों के पीछे जो है कई चीजें लिखी हुई होती हैं। कई बार हमने ये भी देखा है मेरा भारत महान, ऐसे भी ट्रक के पीछे लिखा होता है, आपने सुना होगा या देखा होगा। परंतु हमारा कथन ऐसा है, मेरा भारत महान है नहीं, मेरा भारत महान था, एक समय में था, लेकिन जब हम श्री राम को भूल गए, श्री कृष्ण को भूल गए, रामायण भागवत महाभारत को भूल गए, तो अब हमारा देश महान नहीं रहा। अब हमारा देश भी अन्य देशों की तरह पतित हो गया। केवल धन कमाओ, ऐश करो, यही एकमात्र सिद्धांत हमारे जीवन में है, इससे व्यक्ति सफल माना जाता है। परंतु राम राज्य के लक्षण ये नहीं है। राम राज्य का वर्णन हम कल संक्षेप में कर रहे थे। यदि हमारे समाज में राम राज्य चाहिए तो भगवान को केंद्र बिंदु बनाना चाहिए, भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। जो घर घर में आज कहानी है उसको बदलनी है हमें। हम सब का कर्तव्य है, हमारा है और आपका है। आप में से हर एक जो आज यहां इस सभा में बैठे हैं, आपका भी उतना ही कर्तव्य है जितना कि हमारा है। आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि अपने घर को, एक अयोध्या, एक वृंदावन बनाइए जिसमें राम कृष्ण आदि जीवन के और आपके घर के मालिक हो जाएंगे। हर रोज सुबह उनके पवित्र नामों का जप और कीर्तन कीजिए, उनको भोग चढ़ाए बिना कुछ ग्रहण मत कीजिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के कुछ रामायण महाभारत या भागवत की कथाएं सुनिए और सुनाइए, और फिर देखिए कि आपके जीवन किस तरह से बदल जाएगा, कितना सुख आपके जीवन में आ जाएगा। इस समय पुरुषोत्तम अधिक मास चल रहा है, ये महीना आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अधिक व्याख्या तो हम नहीं करेंगे, हालांकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। केवल इतना कहेंगे कि इस महीने में जितना हम भौतिक कार्य करेंगे या धार्मिक कार्य करेंगे कर्मकांड के दृष्टि से, वो निष्फल होंगे। इस महीने में केवल भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति के कार्य ही फल प्रदान कर सकते हैं। इस पुरुषोत्तम अधिक मास में भगवान की भक्ति करने से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। ये पुरुषोत्तम अधिक मास विशेष करके भक्ति करने के लिए ही भगवान ने बनवाया है। वैसे क्योंकि चांद और सूरज के हिसाब से जो दिनदर्शिका होती है उनमें अंतर होता है, उनको ठीक करने के लिए 3 साल में करीब करीब एक बार ये अधिक मास होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस महीने को अपना नाम दिया है, श्री कृष्ण का नाम है पुरुषोत्तम, श्री राम का भी नाम है पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुष भगवान ही है, उनके अलावा कोई नहीं है, और उन्होंने वरदान दिया है कि जो इस पुरुषोत्तम अधिक मास में मेरी सेवा करेंगे, मेरी कथाओं को सुनेंगे और सुनाएंगे और इनका स्मरण करेंगे भक्ति भाव से, जो मेरे पवित्र नामों का जप और कीर्तन के द्वारा उच्चारण करेंगे, जो थोड़ी बहुत तपस्या करेंगे, थोड़ा कुछ शारीरिक कष्ट स्वीकार करेंगे मेरी प्रसन्नता के लिए, अवश्य इस जीवन के अंत में वो मुझे प्राप्त होंगे, वो मेरे धाम को लौट के आएंगे। और जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम अधिक मास का निरादर करते हैं, इस महीने में कोई विशेष भक्ति के कार्य नहीं करते हैं, परंतु केवल अपने विषय भोग को, अपने इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाए जाते हैं, तो ऐसे लोगों की गति केवल नरक की होगी। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सुनाते हैं, जबकि पांडव अपने वनवास में रहते हैं और श्री कृष्ण वहां जाके उनको पुरुषोत्तम अधिक मास की महिमा का वर्णन करते हैं और उनको उपदेश देते हैं कि आप सबको भी इस पुरुषोत्तम अधिक मास का व्रत का पालन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में नाम संकीर्तन, कथा भगवान की ये ज्यादा करनी चाहिए। तो आप सबसे निवेदन है कि इस पुरुषोत्तम अधिक मास का पूरा पूरा फायदा आप अवश्य उठाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का उच्चारण कीजिए अपने घर में माला के ऊपर और वाद्य के साथ संगीतमय ढंग से भी। बाहर अनेक किताबें भी उपलब्ध हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा विरचित, उनको आप ले सकते हैं, उनको रोज पढ़िए। रामायण महाभारत गीता भागवत और इन पर आधारित अन्य ग्रंथ हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ने से आपका पुरुषोत्तम मास भी सार्थक हो जाएगा और अपने जीवन की सफलता के पथ में आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और इसी करबद्ध प्रार्थना सहित आज की कथा को हम यही विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप सब कल शाम को भी 5 बजे यहाँ आएंगे आगे राम कथा का श्रवण करने के लिए। इतने ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक आपने इस कथा का श्रवण किया और हमें 2 शब्द श्री रामचंद्र के बारे में कहने के लिए प्रोत्साहित किया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं श्री राम से, सीता राम जी के चरणों में, कि हम सब के ऊपर वो ऐसी कृपा करें कि उनके चरण कमलों का आश्रय हमें प्राप्त रहे और उनकी भक्ति भी हमें प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।